नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को प्रेस वार्ता में दिखाए गए मतदाता पहचान पत्र का विवरण देने को कहा। आयोग के अनुसार ये पहचान पत्र उसने जारी नहीं किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के आधुनिकीकरण, विस्तार और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आंध्र प्रदेश के बापटाला जिले में एक ग्रेनाइट खदान में चट्टान गिरने से 6 प्रवासी मजदूरों की मौत। युद्धग्रस्त गाजा में शांति और तत्काल सहायता पहुंचाने के आह्वान के साथ सिडनी, मेलबर्न और केपटाउन में फिलिस्तीनी समर्थक मार्च निकाला गया। रूस का क्रशनिनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा, विमानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन पकड़ मजबूत की। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने दो मतदाता पहचान पत्र रखने संबंधी विवाद में फंसे राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को जांच के लिए विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार के दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि यादव ने कल एक संवाददाता सम्मेलन में जो मतदाता पहचान पत्र दिखाया था वो निर्वाचन आयोग ने जारी नहीं किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर विवादों में घिरते जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज जहां उन्हें पिछले दिनों संवाददाताओं के सामने प्रदर्शित वोटर आईडी कार्ड की मूल प्रति जांच के लिए आयोग के समक्ष जमा करने को कहा है, वहीं भाजपा सहित एनडीए के अन्य नेताओं ने उन पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव का नाम दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है। दीघा के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह पटना सदर अनुमंडल पदाधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने दो मतदाता पहचान पत्र रखकर अपराध किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सवाल उठाया कि क्या श्री यादव ने निर्वाचन आयोग के सामने गलत तथ्य पेश किए हैं।
सर्वोच्च नेता के हैं दो एपिक कार्ड, तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? क्या इसीलिए ये एसआईआर से डरते हैं? तो सोचिए, आरजेडी के, कांग्रेस के जो तमाम लोग आदि हो गए थे गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये दो दो फर्जी वोटर कार्ड बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के आधुनिकीकरण, विस्तार और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। वो आज गुजरात के भावनगर रेलवे स्टेशन से भावनगर अयोध्या छावनी साप्ताहिक रेलगाड़ी को झंडी दिखाने के बाद बोल रहे थे। इस दौरान श्री वैष्णव ने रीवा से पुणे और जबलपुर से रायपुर के लिए दो अन्य रेलगाड़ियों को भी वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
बड़े विजन के साथ रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। नई पटरियां बन रही है, नई तरह की ट्रेन आ रही है। ट्रेन को साफ रखना, स्टेशन को साफ रखना, नए स्टेशन बनाना, कई तरह के काम हाथ में लिए गए हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि भावनगर से अयोध्या धाम को जोड़ने वाली नई ट्रेन आज चालू हुई है। मध्य प्रदेश में दो गाड़ियां रवाना हुई है, एक रीवा से पुणे और दूसरी जबलपुर से रायपुर।
रेल मंत्री ने कहा कि देश में 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन पुनर्विकास परियोजना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महामारी के बाद भारत की बढ़ती आर्थिक मजबूती और तकनीकी प्रगति का उल्लेख करते हुए नागरिकों से विकसित भारत के राष्ट्रीय मिशन में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने गुजरात के भावनगर में व्यापारियों, दिग्गज कारोबारियों और नागरिकों के साथ विकसित भारत संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड के बाद जहां वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में गिरावट देखी गई, वहीं भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गर्व से खड़ा है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। बंदरगाह प्राधिकरण ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो विजन की दिशा में एक सशक्त कदम है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह एक सराहनीय प्रयास है जो संधारणीयता को बढ़ावा देता है और नेट जीरो विजन को सशक्त बनाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के बापतला जिले के बल्ली कुरवा क्षेत्र में एक ग्रेनाइट खदान में आज हुए एक हादसे में 6 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। खदान में काम कर रहे मजदूरों पर ग्रेनाइट की एक चट्टान गिर गई। एक रिपोर्ट।
घायलों को नरसरावपेट के एक अस्पताल में ले जाया गया है। दुर्घटना के समय खदान में 16 मजदूर मौजूद थे। खनन विभाग के अधिकारियों और पुलिस के घटनास्थल पर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। सभी पीड़ित ओडिशा के हैं। पुलिस को संदेह है कि चट्टान पानी के रिसाव के कारण धसी होगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए तत्काल बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के भी आदेश दिए हैं। विजयवाड़ा से हेनरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे एक वाहन में 15 श्रद्धालु सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु की खबर को दुखद बताया है। अपने संदेश में उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का एक संयुक्त अभियान शुक्रवार से जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने उन संभावित ठिकानों पर शिकंजा कस दिया है जहां आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि अभियान में सहयोग के लिए उच्च तकनीकी वाले निगरानी उपकरण और विशिष्ट अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस और सैन्य अधिकारी जमीनी हालात पर कड़ी नजर रख रहे हैं। गौरतलब है कि अब तक 3 अज्ञात आतंकवादी मारे जा चुके हैं जबकि एक जवान भी घायल हुआ है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दी गई। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार विधूड़ी ने एक बयान में कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण बालटाल पहलगाम मार्गों पर मरम्मत और रखरखाव कार्य आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मरम्मत कर्मियों और मशीनों की निरंतर तैनाती के कारण प्रशासन यात्रा फिर से शुरू नहीं कर पाएगा। इस वर्ष 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 4,14,000 से अधिक यात्रियों ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। दिल्ली पुलिस ने आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए 16 अगस्त तक के लिए राजधानी में उड़ने वाली वस्तुओं पर पाबंदी लगा दी है। इनमें पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन और विमान प्रणाली, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट चालित विमान और गर्म हवा के गुब्बारे शामिल हैं। गाजा में युद्ध और अकाल के खिलाफ आज दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। सिडनी में हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए हार्बर ब्रिज पर मार्च किया। मेलबर्न में 25,000 लोग एक रैली में शामिल हुए। ये प्रदर्शन फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने की बढ़ती वैश्विक मांग के बीच हुआ। ये प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी पहुंच चुका है। दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में मदर्स फॉर गाजा आंदोलन की महिलाओं ने गाजा में मानवीय संकट की निंदा करते हुए एक मौन विरोध प्रदर्शन किया। इसराइल के साथ युद्ध विराम के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से खोल दिया है। देश के नागरिक उड्डयन संगठन ने पुष्टि की है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें सामान्य हो गई हैं। तेहरान पर इसराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान ने 13 जून को अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी में आज 600 वर्षों में पहली बार लावा निकला है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि ज्वालामुखी में विस्फोट स्थानीय समय के अनुसार सुबह 2:50 पर हुआ जिसके कारण राख के बादल समुद्र तल से 4 किलोमीटर ऊपर तक देखे गए। ज्वालामुखी के कारण विमानों को खतरे की चेतावनी दी गई है। ज्वालामुखी में ये विस्फोट इस सप्ताह की शुरुआत में आए 8.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप और बार बार आए झटकों से जुड़ा हो सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को सलाह दी गई है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। भदोही के जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि 22 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और गोताखोरों व नाविकों को तैनात किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज दौरा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों को लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया।
जो भी सरकार ने व्यवस्थाएं दी हैं, खाने पीने से लेकर महिलाओं पुरुष के रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारी कोशिश है कि जितने भी प्रबंध शासन ने किए हैं हमारे नागरिकों के लिए सारी सुविधाएं आम जनमानस।
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने औरैया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। राज्य में वर्तमान में लगभग 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्यों की निगरानी के लिए 11 सदस्यीय मंत्री स्तरीय दल तैनात किया है। मुख्यमंत्री ने डीएम एसपी और सीएमओ सहित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह जमीनी स्तर पर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करें। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले 12 घंटों से रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं बागेश्वर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बादल छाए हुए हैं। इस बीच देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। उधर मौसम विभाग ने केरल में आज 14 में से 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। एक रिपोर्ट।
केरल के 7 जिलों के लिए आज और 6 जिलों के लिए कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शेष सभी जिले आज और कल दोनों दिन के लिए येलो अलर्ट पर हैं। कोझिकोड जिले में नदी की धारा में एक व्यक्ति लापता हो गया है। समुद्र की उथल पुथल के कारण केरल तट पर मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोच्चि धनुषकोडी राष्ट्रीय राजमार्ग के मुन्नार गैप रोड खंड से बुधवार तक रात्रि यात्रा प्रतिबंधित है। सुरक्षा उपाय के रूप में कोल्लम जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को भी स्थगित कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से एम स्मिथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विनय सक्सेना।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें साइबर अपराध गुरुग्राम के एसीपी प्रियांशु दीवान और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल शामिल होंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों से साइबर धोखाधड़ी को पहचानने से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए टेलीफोन नंबर हैं 0112371717 और 0112331444। लंदन के ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी श्रृंखला के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के 4थे दिन आज इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में चायकाल तक 4 विकेट पर 317 रन बनाए। फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। मैच के 3रे दिन भारत ने कल अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाकर इंग्लैंड को 374 रन का लक्ष्य दिया था। पंजाब के नामधारी एफसी ने आज कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए डूरंड कप के एक मैच में भारतीय वायुसेना को 4-2 से हरा दिया। हाफ टाइम तक नामधारी एफसी 2-1 से आगे चल रही थी। नामधारी एफसी ग्रुप ए में 2 मैचों में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को प्रेस वार्ता में दिखाए गए मतदाता पहचान पत्र का विवरण देने को कहा। आयोग के अनुसार यह पहचान पत्र उसने जारी नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के आधुनिकीकरण, विस्तार और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आंध्र प्रदेश के बापटाला जिले में एक ग्रेनाइट खदान में चट्टान गिरने से 6 प्रवासी मजदूरों की मौत। युद्धग्रस्त गाजा में शांति और तत्काल सहायता पहुंचाने के आह्वान के साथ सिडनी, मेलबर्न और केपटाउन में फिलिस्तीनी समर्थक मार्च निकाला गया। रूस का क्रशिनिनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा। विमानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी क्रिकेट के अंतिम टेस्ट मैच में 4थे दिन पकड़ मजबूत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।